ओम शांति। रात्रि क्लास चल रहा था, 4/6/1965 दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। एक को जानने से आधा कल्प के लिए विश्व के मालिक बन जाते हैं, फिर आधा कल्प के बाद उसी एक को भूल जाने से कंगाल बन जाते हैं। कौन से युग से? द्वापर युग से। गाया भी जाता है, पावन दुनिया पतित दुनिया, बरोबर भारत स्वर्ग भारत ही नरक। भारत स्वर्गवासी, भारत नरकवासी। इसलिए ये माताएं क्या जाने, वेदों को फलाने शास्त्रों को इनमें क्या रखा है। तो माताओं को इन जंजीरों से भी छुड़ाए देते हैं। ये वेद शास्त्र आदि भी जंजीरें हैं, बहुत कड़ी जंजीरें हैं, क्योंकि बड़े कड़े गपोड़े लगाए हुए हैं। तो बाप आकर के उनका सार समझाते हैं। और कहते हैं कि अभी ये भक्ति मार्ग भी पूरा होता है, तो इस भक्ति मार्ग की सामग्री भी पूरी होती है। ये सारी सामग्री इस यज्ञ में ही स्वाहा हो जाएगी। 4/6/65 की वाणी का तीसरा पेज। तो इनको भूल जाओ और बाप को याद करो। कोई से पूछते हैं कि बाप को याद क्यों नहीं करते हो? अरे कोई ऐसा थोड़े ही होगा जो बाप को याद नहीं करता होगा। सिर्फ ये पारलौकिक बाप की यादगिरी नहीं है, इसलिए बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बाप बाबा को सो भी जो स्वर्ग का वारिस बनावे उनको ही भूल जाते हैं। सारा मदार है याद के ऊपर। अच्छा अभी सब बच्चे मौज में बैठे हैं, ये बच्चे रूप भी हैं, बसंत भी हैं, उनका रूप है ना। तो जो मेरा रूप है जिसको ये लिंग कहते हैं, और बरोबर फिर ज्ञान का सागर है, तो जरूर बसंत भी है। तो तुम हर एक रूप बसंत हो। आत्मा का रूप भी हो, परंतु बड़ा सूक्ष्म, एकदम बिंदी, और इस सूक्ष्म बिंदी में कितना ज्ञान भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा को ज्ञान का सागर कहते हैं, कहते तो है ना। तो ज्ञान सागर को थोड़े ही कहेंगे कि बरसात बरसाते हैं, नहीं वो बरसाते नहीं है, ज्ञान सुनाते हैं। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? यही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज, जो बच्चों को जरूर जानना चाहिए और बहुत इजी है, मोस्ट इजी है। इन शास्त्रों वेदों ग्रंथों का पता नहीं क्या क्या कितने अंबार है। यहां बोलते हैं बच्चे, ये शास्त्र आदि सब तकलीफें की बातें हैं, बत्ती मार की बातें हैं, अब इन सब को छोड़ दो, सिर्फ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। कितना इजी है, नाम भी रखा है जी, सहज राजयोग और सहज ज्ञान षष्ठी के चक्र का। याद और षष्ठी का चक्कर। अच्छा, षष्ठी का चक्कर तो जरूर याद आएगा, बिल्कुल सिंपल बात है और जानते भी हो कि हम फिर अभी राजयोग सीख करके राजा बनते हैं। नंबर वार वो ऐसे ही आकर के निश्चय बुद्धि होती है। अच्छा चलो बच्ची बाजा बजाओ, मालूम है बच्ची अभी ट्रेन में होगी तो जितना हो सके रात में भी बैठ करके, क्योंकि ट्रेवलिंग में तकलीफ तो होती है। जैसे कहते हैं ना कि हम इनके लिए दुआ भीख मांगते हैं, क्या कहते हैं, उनका दुआ मांगते हैं। तो ऐसे हम फिर बाबा को दुआ मांगते हैं। अभी बाबा को याद करना ये तो हमको पहले ही फायदा होता है, ठीक बोलते हैं ना। जैसे देखो गीता में भी लिखा हुआ है, गीता का पाठ पढ़ करके फिर जो उनका फल है वो देते हैं। अपनी माँ तुम्हें अर्पण है, उनका उद्धार हो जाएगा, ऐसे कुछ कहावत है ना। तो यहां बाप भी ऐसे ही कहते हैं कि बच्चे अब बाप को भी याद करो और मम्मा के लिए तंदुरुस्ती सुख से आकर के पहुंच जाए। स्टेशन पर सी ऑफ करते हैं, विश यू हैप्पी जर्नी या सेफ प्रवेश, ऐसे कहते हैं ना। याद करने से पहले तुम्हारा भला, याद करके अपन को और फिर तुम दादा को करते हो और मम्मा को करते हो, कोई दूसरे को तो याद नहीं करते हो। बाबा को भी तो सुबह को भी, तो उनकी ट्रैवलिंग सुखाली हो जाए। देखो हम इस भारत को भी दान देते हैं बाबा, अभी इस भारत को पावन बनाओ। श्रेष्ठाचारी देवता बनाओ। बाबा सबकी बुद्धि का ताला खोलो। तो सुखधाम के मालिक बने या शांति धाम के मालिक बने, तो तुम बच्चे शुभचिंतक हुए ना, गुप्त सेल्वेज कर रहे हो और तुमको गुप्त उसका फल मिलता है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है। जो नए नए आते जाएंगे वो जानते जाएंगे। तुम रियल रूहानी सेलिब्रेशन आर्मी हो जो भारत का बेड़ा पार करते हो। ये बेड़ा किसने बोड़ा है? रावण ने बोड़ा है क्या? क्या बोड़ा है? बेड़ा। बेड़ा किसको कहा जाता है? बेड़ा बड़ा है, नवैया छोटी होती है। तो ये बेड़ा रावण ने बोड़ा है। क्या हुआ बेड़ा? शरीर रूपी बेड़ा है। फिर इस बेड़े को सेल्वेज कौन करते हैं? राम। अभी राम वो नहीं त्रेता वाला, न वो राम की बात है न बंदर की बात है। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे ज्ञान सितारों प्रति मात पिता का याद प्यार गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 5/6/1965 शनिवार। रिकॉर्ड चला है धीरज धर्मनुआ धीरज धर्म। बच्चों ने क्या सुना? ये कौन कह सकते हैं धीरज धरो? बाप ही के बच्चों से कह सकते हैं। कोई सन्यासी उदासी या कोई भी लौकिक बाप नहीं कह सकते। ये पारलौकिक बाप बच्चों को कहते हैं क्योंकि आत्मा ही मन बुद्धि तो है। तो कहते हैं ये आत्माएं अभी धीरज धरो। अभी बच्चे जानते हैं कि ये बेहद का बाप कह रहे हैं और सारी दुनिया को कहते हैं कि बच्चे धीरज धरो। अभी फिर तुम्हारे शांति और सुख के दिन आ रहे हैं। अभी जो सुनते हैं सो तो समझेंगे ना। ये आवाज कोई बाहर में तो नहीं जाएगी। हाँ एक दिन ये हो सकता है कि कोई टेलीविजन आदि निकलेंगे तो यहां बैठ करके सुनाएंगे और कोई सुनेंगे। कौन सुनाएंगे? यहाँ माने कहाँ? यहाँ बैठ करके सुनाएंगे और कोई टेलीविजन में सुनेंगे? यहाँ माने कहाँ? माउंट आबू में कौन बैठ करके सुनाएंगे? हैं? शिव बाबा बैठ करके सुनाएंगे? शिव तो ज्योति बिंदु को कहते हैं, तो बिंदु कैसे सुनाएंगे? जरूर कोई तन के द्वारा सुनाएंगे ना, और कोई बच्चे बैठ करके सुनेंगे तो भी ऐसे कहेंगे ना, हे बच्चों धीरज धरो, अभी ये दुखधाम है, उस समय तक प्रत्यक्षता हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? है, हो जाएगी। तो उस समय भी ऐसे कहेंगे बच्चे धीरज धरो, ये दुखधाम है, दुखधाम के पीछे सुखधाम तो जरूर आता ही है, सुखधाम की स्थापना सुतो बाप ही करेंगे, और बाप ही बच्चों को ये सिलसिला तसल्ली का देते हैं, धीरज देते हैं कि बच्चे धैर्य धरो। पहले तो बच्चों को निश्चय चाहिए ना, निश्चय होता है फिर ब्राह्मणों को, तो जिन ब्राह्मणों को निश्चय होता है वो फिर मुख वंशावली बनते हैं। किसको निश्चय नहीं होता? कौन से ब्राह्मणों को निश्चय नहीं होता? कुख वंशावली ब्राह्मणों को निश्चय नहीं होता कि ये बाप कहते हैं धीरज धरो। तो ब्रह्मा मुख वंशावली तुम बच्चे बनते हैं, नहीं तो इस समय में ब्राह्मण कहां से आए? इतने ब्रह्मा कुमार और कुमारियां कहां से आए? कुमार और कुमारियों का अर्थ यह है बच्चे और बच्चियां, परंतु जो पत्थर बुद्धि मनुष्य हैं ये बातें समझ नहीं सकते हैं, भला पूछते भी नहीं है। तुम इतने सभी जो कहते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो उन शास्त्र पढ़ने वालों को बुद्धि में लगना चाहिए कि जरूर कोई प्रजापिता होगा, प्रजापिता ब्रह्मा, जो इतने सब कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां और एक के लिए ही सब कहते हैं। इनका एक ही माता पिता है, माता पिता दो होते हैं कि एक होता है? है, दो होते हैं और इनका एक ही माता पिता है, सो कैसे है? कौन पिता और कौन माता और एक ही कैसे? प्रजापिता ब्रह्मा वो तो पिता हो गया, और उसमें जो ब्रह्मा माता प्रवेश है वो माता हो गई, तो तो एक माता पिता के ही ब्राह्मणों ब्राह्मणियां होते तो नहीं है। यहां तो एक पिता एक माता के ही ब्राह्मण ब्राह्मणी है, तो जरूर ब्रह्मा और प्रजापिता कंबाइंड होंगे ना। दुनिया में सबके तो अलग अलग होते हैं। वो है कुकवंशावली और यहां ये सभी हैं नए ब्राह्मण। जो ब्राह्मण पहले थे ही नहीं, पहले तुम कोई ब्राह्मण मुख के नहीं थे, जैसे वो ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों की जात है, वो है कुखवंशावली की जात और तुम हो मुखवंशावली। तो बाप बैठ करके समझाते हैं और अभी ये निश्चय की बात है, हर एक बात में निश्चय बुद्धि चाहिए कि कौन हमको कहते हैं। बरोबर कल पहले ही भगवान ने कहा था, अभी भी भगवान ही कहते हैं, समझाते हैं कि बरोबर अभी ये कलयुग का अंत है, लड़ाई सामने खड़ी है और वो ही महावारी महाभारत की लड़ाई है और वो ही यादव वो ही कौरव वो ही पांडव भाई भाई थे जो अभी भी हैं। यादव यूरोपवासी जिन्होंने ये बॉम्ब्स वगैरह की इन्वेंशन की, वो भी तो गाया हुआ है, जरूर गाया हुआ है कि इनकी बुद्ध रूपी पेट से ये मूसल निकलेंगे जो अपने ही कुल का विनाश करेंगे। देखो लिखा भी हुआ है और बरोबर जानते हो कि वो कुल का विनाश करेंगे जरूर, देखने में भी तो आता है जरूर, कहते भी हैं तो एक कुल के, वो उनको कहते हैं कि एक बाम से तुम्हारा विनाश करेंगे और वो उनको कहते हैं देख लेना हम विनाश कर देंगे। तो हर एक बात में कंपटीशन हो रही है। बरोबर यह भी लिखा हुआ है, ये कोई लाखों वर्ष पुरानी बात तो नहीं है, पेट से मूसल निकले वो यादव बड़े धनाढ्य थे, बहुत शराबी कबाबी थे। बाप अभी बैठ करके अच्छी तरह से समझाते भी हैं कि बच्चे अभी जानते हो ना, धीरज धरना है कि बरोबर ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, पहले भी खत्म हुई होगी, तब तो भारत ऐसा बना था। सतयुग तभी बनेगा जब कलयुग खलास होगा, जब अनेक आसुरी संप्रदाय अनेक राजधानियां खलास होंगी, तो जरूर उनके पहले ही एक राजधानी की स्थापना होनी चाहिए। ये तो गाया ही जाता है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश। पहले विनाश भी नहीं करना चाहिए, पहले स्थापना। ये स्थापना पूरी हो जाती है फिर विनाश। अभी देखो स्थापना हो रही है। है तो एकदम डिफिकल्ट मार्ग और एकदम नया मार्ग, कोई भी कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। सब कोई समझते हैं कि पता नहीं ये क्या है, क्या बोलते हैं। कभी न कोई ने कान से सुना, न कोई ने किया, इन्होंने ये सारी बातें कहां से ले आई। वो समझते हैं जैसे और मठ पंथ धर्म स्थापन होते हैं, वैसे ये भी कोई ब्रह्मा कुमारियों का नया धर्म है या पता नहीं क्या है। अब बरोबर है तो उनका दोष है ही नहीं, क्योंकि ये कलप पहले भी ऐसे ही था, बिगन डालते ही रहते थे, क्योंकि पता नहीं था। अभी है भी बरोबर कि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें विघ्न डालते ही रहते हैं। कौन बार बार विघ्न डालते हैं, है शास्त्रों में भी है ना। कंस के राज्य का विनाश हुआ तो राजधानी स्थापन की ना मथुरा में, तो कौन विघ्न डालता था? जरासिंधी। जरा माने ही पुराने, सिंधी माने सिंधी। रुद्र कहा ही जाता है शिव को, और इसको ही कहा जाता है प्राचीन सहज राजयोग। अभी प्राचीन सहज राजयोग का भी तो अर्थ नहीं जानते हैं ना, कोई सतयुग में तो नहीं आकर के स्थापन किया होगा। ये संगम युग है। बाप कहते हैं कि बच्चे भला समझ तो धरो, पतित और पावन तो दोनों का संगम हुआ ना। पतित कहा जाता है कलयुग के अंत को और पावन कहा जाता है सतयुग के आदि को। अच्छा, सतयुग आदि में है देवी देवता धर्म और यहां अनेक हैं आसुरी धर्म। आसुरी धर्म किसको कहा जाता है? 5/6/1965 की वाणी का दूसरा पेज। ये रावण राज्य है, राक्षस राज्य। देखो ये कहते भी हैं और आगे चल के और ही कहेंगे, खुद भी कहेंगे कि ये राक्षस राज्य है। इनके एमपी वगैरह भी कह देते हैं कि ये राक्षस राज्य है। बरोबर दिखलाया हुआ भी है असुरों और देवताओं की युद्ध। तो बाप आकर के समझाते हैं कौरव और पांडव आसुरी संप्रदाय, वो और तुम हो दैवी संप्रदाय। परंतु इनकी आपस में कोई युद्ध थोड़ा ही लगी है, ये भी भूल है। बाप कहते हैं तुम्हारी युद्ध देखते हो ना, अब उसमें ऐसा तो नहीं लिखा है कि यवन और कौरवों की या कांग्रेस की लड़ाई। ये है मुसलमान और उनकी आपस में लड़ाई, तुम भाई भाई आपस में कैसे लड़ेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है। कहते भी हैं एक है धृतराष्ट्र की औलाद, धृत माने धारण कर लिया, राष्ट्र माने सारे राष्ट्र की धन संपत्ति, जिसने धारण कर लिया बड़ा पूंजीपति बना बैठा, उसकी परछाई में पलने वाले ये धृतराष्ट्र की औलाद, अंधे की औलाद अंधे, और एक है युधिष्ठिर की औलाद। आदि में भी युद्ध में स्थिर रहा, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ, कहते भी हैं दो भाई, एक कहानी बैठ करके बनाई है, सो कहानी बाप बैठ करके समझाते हैं, कहा भी है ना कि ब्रह्मा द्वारा सभी वेद ग्रंथों शास्त्रों वगैरह का सार बैठ करके समझाते हैं। ये समझाते हैं कि सभी वेद शास्त्र ग्रंथ है, इनमें से धर्मशास्त्र किसको कहना चाहिए, धर्म माने धारणा, अच्छी अच्छी धारणाओं का शास्त्र, तो समझाए दिया कि मुख्य धर्म तो चार हैं, देवता इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन, उनमें पहले में पहला कौन सा, आदि सनातन देवी देवता धर्म, उनका शास्त्र कौन सा, सर्वशास्त्र में शिरोमणि यानी जो पीछे हुए हैं, पीछे वाले धर्म है ना इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन, उन सबसे पहले नंबर में ये ऊंची है सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता। अरे भाई वो गीता किस धर्म का शास्त्र है, भारत का शास्त्र है, अभी भारत का शास्त्र किसका, उस धर्म से क्या हुआ, उस धर्म से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, यानी सतयुग के आदि सनातन सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्मों की स्थापना। तो देखो ये संगम युग पर हुई होगी ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में हुई नहीं, कॉन्फ्लुएंस में यानी संगम पर, इसको फिर कुंभ भी कहा जाता है। कुंभ में क्या दिखाते हैं, दक्षिण की ओर से आने वाली काली नदी, काला ही काला पानी, और उत्तर भारत की ओर गंगा नदी, दोनों का मेल कहा जाता है। अभी तुम जानते हो ये कुंभ का मेला है, विदेशी संस्कृति और भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य धारणाएं और पूर्व की धारणाएं, जहां से सूर्य उदय होता है, तो ये कौन सा कुंभ है, ये भी है, कोई उसे स्थूल पानी और सागर का कुंभ नहीं है। ये तो चैतन्य ज्ञान सागर है और ज्ञान सागर की संतान आत्माओं का कुंभ है। ये आत्माएं और परमात्मा का मिला, उसे कहा जाता है संगम, सुहावना संगम और कल्याणकारी संगम। बरोबर कलयुग से सतयुग है, ये तो जरूर होना चाहिए, तो उसको कल्याणकारी युग सो भी संगम युग कहेंगे, और कोई भी युग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि सतयुग से त्रेता आता है तो दो कला गिरना होता है, वो कोई कल्याणकारी थोड़े ही हुआ, गिरना हो गया ना, वो तो अकल्याणकारी हो गया। फिर 14 कला से चलो नीचे, ये भी तो अकल्याणकारी हुआ। चलते जाओ, नीचे उतरते जाओ, सभी अकल्याणकारी, अकल्याण ही अकल्याण होता जाता है। अच्छा, फिर कल्याण भी तो चाहिए, क्योंकि जब पूरा कल्याण हो जाता है तब बाप आते हैं, फिर सबका कल्याण करते हैं। पूरा कल्याण कब होता है? है कब होता है पूरा कल्याण? सन 36 में, 76 में, न 36 को न 76 को महाशिवरात्रि कह सकते हैं। महाशिवरात्रि जब सारे संसार में अज्ञान अंधकार की रात्रि छा जाए, कोई सोजरे में न बचे, सब अज्ञान अंधकार में डूब जाए, तो कब होती है? है? तब वही होती है जब बोला तुम बच्चों को तमोप्रदान से सतोप्रदान बनने में 40 से 50 वर्ष पूरे होते हैं, तब बाप आते हैं, फिर सबका कल्याण कर देते हैं। और बाप ही बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि अभी तुम्हारा कल्याण हो रहा है। इसको कहा जाता है सुहावना, कल्याणकारी, आस्पीशियस युग। अंग्रेजी में नाम भी दिया हुआ है ना, ये कल्याणकारी युग है। बुद्धि से काम लो कि बरोबर बाप आएगा। कब आएगा? हैं? अरे कब आएगा? अरे सब मुझे गए क्या? बाप आ गए? बाप कितने हैं? बेहद के दो बेहद के बाप हैं, एक है आत्माओं का बाप और एक है मनुष्यों का बाप। तो कौन आ गया और कौन आ जाएगा? अरे हैं, राम बाप आ गया सन 76 में, लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? बोला है 66 में बोला। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। जन्म होना माना प्रत्यक्षता रूपी जन्म होना। तो राम वाली आत्मा जो नारायण बनती है, नर से नारायण, उसने प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब लिया, कब आया? 76 में आया, प्रत्यक्ष हुआ। तो बुद्धि से काम लो। कि बरोबर आत्माओं का बाप भी आएगा। कब है? मुरली में क्या बोला? तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में कितना टाइम लगता? 40 वर्ष से 50 वर्ष लगते। तो किसने बोला ये? ये किसने बोला? शिव बाप ने बोला। माने शिव बाप आ गया, राम बाप ने बोला। सर्व का कल्याण करने आएंगे और सो आएंगे भी इस संगम युग पर। युग युगे थोड़े ही आएंगे, न युगे युगे की शूटिंग में आएंगे। जो गीता में लिख दिया है संभवाम युगे युगे, वो सर्व का सदगति दाता है। कोई एक राम की बुद्धि का सदगति दाता नहीं है, सारे संसार का सदगति दाता है। कि एक दो चार का सर्वमाना इस समय में सब हो जाएंगे। और सर्व को कोई द्वापर युग में तो नहीं कहेंगे। द्वापर युग में सर्व आत्मा इस सृष्टि पर आ जाती है क्या? सर्व कोई त्रेता में भी तो नहीं कहेंगे। और सर्व कोई सतयुग में भी नहीं कहेंगे, वहां तो बहुत थोड़े होते हैं। तो सर्व माना आएगा ही अंत में, जबकि सभी आत्माएं सच्ची रूपी रंगमंच पर आ जाती हैं और पिछाड़ी में आ ही जाएंगी। जो कुछ भी रही कोई है तो सब आ जाएंगे। आप सुनते हो कि बाबा हमको धीरज देते हैं और हम भी जानते हैं, हम जानते हैं और कहते हैं बाबा अब जल्दी आ जाओ। क्या? अब जल्दी आ जाओ, यहां तो बड़ी खिटपिट है, हैं? बड़ा दुख है। नहीं बच्चे, ये तो ड्रामा है ना, ये ड्रामा तो अपने टाइम पर, जब तुम सभी बच्चे ज्ञान लेकर के पढ़ करके और ये पढ़ाई पूरी फूलों की बादशाही बन जाए। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो ना, अभी फट से तो नहीं होगा। फट से कोई कांटे से फूल बन जावेंगे क्या? जो भ्रष्टाचारी है वो फट से कोई श्रेष्ठाचारी थोड़े ही बनेंगे। हाँ, निश्चय बुद्धि होकर के फिर पुरुषार्थ करना है। किस बात पर निश्चय बुद्धि हो? बाप पर, कौन से बाप पर? अरे जो बाप आ गया, प्रत्यक्ष हो गया ज्ञान के आधार पर, उस पर निश्चय बुद्धि होकर, या आत्माओं के बाप पर निश्चय बुद्धि होकर? कौन से बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि होकर? कौन आ गया? हाँ, राम बाप आ गया, बुद्धि में भी आ गया। फिर पुरुषार्थ करना है, क्या करना है? पुरुष अर्थ। पुरुष किसे कहते हैं? पुरु कहते हैं पुरी को। ये शरीर रूपी पुरी है, समाना सहन करने वाली है। कहाँ? ये शरीर रूपी इस पुरी में सहन करने वाला जो पुरुष है, उसके अर्थ जो किया जाए वो है पुरुषार्थ। तो शरीर के लिए किया जाए या शरीर रूपी पुरी में रहने वाले आत्मा के अर्थ किया जाए, आत्मा के अर्थ पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? हैं? निश्चय बुद्धि होने का पुरुषार्थ करना है। फट से कोई नहीं बन सकते हैं। फट से जो कहा जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, हाँ ये तो ठीक है, पहचाना और वर्ष का अधिकारी बना। कि घड़ी घड़ी पहचाना, घड़ी घड़ी भूल गया और वर्ष का अधिकारी बन जाए, है? ऐसा तो होता ही नहीं। बाप का वर्षा वो तो ठीक है, तुम सभी पावन दुनिया में चलने वाले हो। कौन है तुम सभी? माने कौन? जो भी बाप से डायरेक्ट सुनने वाले हैं। कौन से बाप से? जो राम बाप से डायरेक्ट सुनने वाले हैं, वो सभी पावन दुनिया में चलने वाले। और बाप तो इब्राहिम है, वो भी है या नहीं है? क्राइस्ट भी है, बुद्ध भी है। वो बाप सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष नहीं होंगे क्या? होंगे या नहीं होंगे? वो भी सुनाएंगे या नहीं सुनाएंगे? वो भी अपने फॉलोअर्स को सुनाएंगे। लेकिन तुम बच्चे उन धर्म पिताओं से सुनने वाले नहीं हो। किससे सुनने वाले हो? राम बाप से सुनने वाले हो। तो जो जो भी फिर आएंगे, परंतु वहां भी तो पद है ना, स्टेटस है, तो उनके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पढ़ाई में पुरुषार्थ होता है ना, तो ये पढ़ाई ही पढ़नी है। ऐसे तो नहीं होगा कि झट से तुम कर्मातीत अवस्था को पा जावे। अगर कर्मातीत अवस्था फट से हो जाए तो तुमको शरीर छोड़ना पड़े, फिर तो इस दुनिया में तुम आत्मा रह भी न सको। परंतु नहीं, ऐसा ला नहीं कहता है कि इतना फट से तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो जाओ। नहीं, माया बिल्कुल ही अच्छी तरह से तुमसे युद्ध करती है और बड़ी युद्ध करती है। 5:65 की वाणी का तीसरा पेज। तो क्या युद्ध में कोई एक सेकंड में हार जीत हो जाती है? हो जाती है, हैं? अरे युद्ध में एक सेकंड में हार जीत हो जाती है कि कुछ टाइम लगता है? उनकी 8-8 वर्ष 10-10 वर्ष युद्ध चलती है, तब कहीं हार जीत होती है। कभी कभी कोई की 10-10, 15-15 वर्ष भी युद्ध चलती रहती है। और ये तो तुम्हारी युद्ध है माया से, वो टैक्स टाइम। जब तक बाप है तब तक तुम्हारी युद्ध चलती ही रहती है। पिछाड़ी में आकर के रिजल्ट निकलेगी कि किसने कितना माया को जीता और कितना कितना कर्मातीत अवस्था को पहुंचे। बाबा कहते रहते हैं ना, बच्चे अभी अपने बाप को, अपने घर को याद करो। घर को ही कहा जाता है मुक्ति धाम, निर्वाण धाम। वो घर है ना, उनको शांति धाम कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा शांत स्वरूप है ना, तुम ऐसे मत समझो कि सतयुग को शांति धाम कहा जाता है। शांति माना ही निर्वाण, यानी शरीर भी नहीं हो, आत्मा हो। और आत्मा तो शरीर बगैर बोल भी नहीं सकती है। तो सच्चा सच्चा शांति धाम तो उसको कहा जाता है। क्या कहा है? किसको कहा जाता है? अरे तुम शांति धाम कोई षष्ठी पर उतार लेंगे, वो सच्चा सच्चा परम धाम नहीं कहा जाएगा है? है? कहा जाएगा साकार षष्ठी पर। जो तुम परम धाम को उतार लेंगे वो सच्चा सच्चा नहीं होगा, होगा शरीर नहीं होगा वहां। शरीर होगा तो सच्चा सच्चा कहां हुआ है? शांति माना ही निर्वाण, वाणी से परे, यानी शरीर भी न हो। हाँ, इस षष्ठी पर जो परम धाम उतारेंगे वहां रहने वालों को शरीर का भान ही नहीं रहेगा। तो सच्चा सच्चा शांति धाम उसको कहा जाता है, शांति धाम, निर्वाण धाम, वानप्रस्थ यानी वाणी से परे। वो तो हमारा घर है। अभी तुम बच्चों को ये मालूम पड़ा क्या कि हमारा ये घर नहीं है जिसके लिए बोल दिया क्या कि मैं मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, और ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। तो अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा, खुशी है तुम्हारी बुद्धि में जिनको निश्चय है। बरोबर हम तो रहने वाले हैं निर्वाण धाम के, और बरोबर ये ड्रामा है। अभी ड्रामा तुम्हारी बुद्धि में रहा शुरू से लेकर के, ऊपर से लेकर के, तो ऊंचे ते ऊंचा सा हुआ ना। कहते भी है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, और सेकंड नंबर में है तीन लोग, साइलेंस, मूवी और टाके। उसको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन कहा जाता है। तो अभी ये तो कॉमन बात है, सो भी कोई दूसरों की बुद्धि में नहीं है, ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। भले कितने भी कोई शास्त्र पढ़े हुए हो, ये बाबा तो बहुत ही शास्त्र पढ़ा हुआ था, बाबा की बुद्धि में ये सब बातें थोड़े ही थी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। जैसे तोते ढेंडरों के मुआफिक पढ़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। देखो गीता पढ़ते थे, लिख दिया है किसको महात्मा का फल देना हो तो उनका उद्धार हो जाएगा, चलो पितराय नमः, फलाने को नमः करके उनको दे दिया। ये तो करते आए थे, ये तो सभी करते रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं। डब्बे में ठीकरी कोई ये थोड़े ही कहता रहता है कि बरोबर बुद्धि में आया। हाँ हम दूर देश में रहने वाले हैं, परमधाम में रहने वाले हैं, ये थोड़े ही कोई के बुद्धि में। पीछे वो बाबा वहां रहते हैं। अभी ये मालूम पड़ा, नहीं तो बाबा कहना ही किसको नहीं आता है। कोई भी ऐसे नहीं समझते हैं कि हमारा सांप का बाबा, जिसको हम पतित पावन कहते थे, वो परमधाम में रहते हैं, और वो बाबा कब आएंगे ऐसे कभी तो किसी को मालूम होगा। कभी माने कभी, वो बाबा कब आएंगे ऐसे कभी तो किसी को मालूम होगा। कभी माने कभी मालूम होगा है, किसी को मालूम होगा, किसको मालूम होगा। पहले पहले कोई को तो मालूम होगा कि कोई को नहीं मालूम होगा है। अरे वो बाबा कब आएंगे ऐसे कभी तो किसी को मालूम होगा। एक तो कब आएंगे, दूसरा कब आएंगे ये कभी तो मालूम होगा, और कोई माने किसी को तो मालूम होगा। अष्टदेव को इकट्ठा मालूम हो जाएगा, अरे तो पहले किसको मालूम होगा। कब आएंगे वो पता चला, पता चला कब आएंगे। अरे 40 वर्ष पुरुषार्थ पूरा करने के बाद कम से कम मालूम पड़ेगा। क्यों, मुरली के क्लैरिफिकेशन से नहीं मालूम पड़ता है। ब्रह्मा के मुख से मुरली पहले चली तो मुरली जहां से ज्ञान है या ज्ञान अमृत है, ज्ञान है। जो मुरली है वो गीता ज्ञान है, और उसका क्लैरिफिकेशन वो ज्ञान अमृत है। अमृत मंथन करके निकलता है, तो मंथन करके कोई ने तो पहले निकाला होगा कि कब आएगा है? राम बाप ने ही निकाला। और फिर कभी तो मालूम होगा है? कब मालूम हुआ? नहीं, 76 में तो राम बाप आया, बेहद का बाप, मनुष्य सृष्टि का। लेकिन उस समय ये थोड़े ही पता था कि पुरुषार्थ के 40 वर्ष पूरे होंगे तब आएगा आत्माओं का बाप। जो पतित पावन है, सब पतित आत्माओं को पावन बनाने वाला है। कब पता चला? गीता ज्ञान से मालूम पड़ा ना है? मंथन से मालूम पड़ा, गीता पढ़ने से मालूम पड़ा या मंथन से मालूम पड़ा? मंथन से मालूम पड़ा। तो कब आएंगे ये भी पता चला।